नमस्कार भारत, 8 अक्टूबर मंगलवार, मैं हूं आदर्श राठौर। अमरीकी सैनिकों के हटने के बाद उत्तरी सीरिया में हमले को तैयार तुर्की को ट्रंप ने चेताया, कुर्दों को बनाया निशाना तो तबाह कर देंगे। रफाल लाने फ्रांस गए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्या रफाल पर फिर गरमाएगी राजनीति, और जानेंगे भारत को रफाल से क्या लाभ होगा।
रफाल के मुकाबले का तो कोई हवाई जहाज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर है ही नहीं।
मुझे नहीं लगता है कि इसे राजनीतिक दल जो है इसे फिर एक मुद्दा जैसे भूल पाएंगे।
जानेंगे मध्य प्रदेश सरकार को क्यों वापस लेना पड़ा एक ही जगह से दूध और चिकन बेचने का फैसला। खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप राय से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तरी सीरिया से अमरीकी सैनिकों के हटाने के फैसले पर अडिग हैं। फैसले के बाद इस बात का डर है कि इससे इस्लामिक स्टेट को फिर से लामबंद होने का मौका मिलेगा और कुर्द लड़ाकों पर तुर्की के हमले का खतरा बढ़ जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर तुर्की अपनी हदें पार करता है तो उसकी अर्थव्यवस्था को वे नष्ट कर देंगे। उधर तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उत्तरी सीरिया में संभावित सैन्य अभियान की उसने पूरी तैयारी कर ली है। मंत्रालय का कहना है कि सीरिया में सुरक्षित जोन बनाना उस इलाके में शांति के लिए बहुत ही जरूरी है। मेडिसिन में इस साल का नोबेल पुरस्कार एक ब्रितानी डॉक्टर और दो अमरीकी वैज्ञानिकों को मिला है। प्रोफेसर सर पीटर रेडक्लिफ, विलियम कॉयलिन और ग्रेग सेमेंजा ने खोज की थी कि कैसे कोशिकाएं कम ऑक्सीजन की समस्या से निपटती हैं। सर पीटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हैं। उन्होंने कहा कि इस खोज से दिल के दौरे, एनीमिया और कैंसर के इलाज में नए दरवाजे खुलेंगे। अधिकांश बीमारियां ऑक्सीजन की कमी के कारण और जटिल हो जाती हैं, इसलिए हमारे नतीजे बीमारियों के लिए प्रासंगिक हैं और हम उम्मीद करते हैं, हालांकि एक उम्मीद ही है, कि इससे नई दवाएं बन सकेंगी। ये थे जॉन रेडक्लिफ के शब्द। इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह ने एक टेलीविजन संदेश में हिंसा खत्म करने की अपील की है। देश में पिछले एक सप्ताह से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हजारों घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने दोनों तरफ से हुई हिंसा की निंदा की और दोषियों को जनता का दुश्मन बताया। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करना और मीडिया और पत्रकारों को निशाना बनाना उस इराक के लिए अस्वीकार्य है, जहां हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई है और जहां अधिकार और आज़ादी संरक्षित हैं। इराकी राष्ट्रपति बरहम सालेह के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी शोधकर्ताओं ने कहा है कि उन्होंने ग्रह शनि की कक्षा में चक्कर लगाने वाले 20 चंद्रमाओं की खोज की है। हवाई में टेलीस्कोप की मदद से खगोलविदों ने ये खोज की। उन्होंने कहा है कि इनमें हर एक चांद का व्यास 5 किलोमीटर है। अभी तक की जानकारी में सबसे अधिक चांद वाला ग्रह बृहस्पति था, जिसकी कक्षा में 79 चांद हैं, जबकि शनि की कक्षा में 82 चांद हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ चल रहे महाभियोग की कार्रवाई के दौरान अमरीकी कांग्रेस की 3 कमेटियों के चेयरमैन ने व्हाइट हाउस और पेंटागन को कानूनी नोटिस जारी किया है। यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर अस्थायी रोक के ट्रंप के फैसले के बारे में और जानकारी मांगी गई है। इस बारे में मंगलवार तक सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने को कहा गया है। ब्रेग्जिट समझौते के तहत आयरलैंड की सीमा को लेकर दिए गए ब्रिटेन के प्रस्ताव पर यूरोपीय संघ ने विरोध दर्ज कराया है। प्रस्ताव के उस अनुच्छेद को लेकर चिंता जताई गई है, जिसके अनुसार उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड की सीमा के किसी तरफ कस्टम चौकियां नहीं बनाई जाएंगी। यूरोपीय संघ वार्ताकार का कहना है कि अगर नए समझौते पर उत्तरी आयरलैंड की असेंबली ने वीटो कर दिया तो वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अमरीका ने कहा है कि शिनजियांग प्रांत के वीगर मुस्लिमों के खिलाफ कथित अत्याचार के कारण उसने चीन के 28 संगठनों को काली सूची में डाल दिया है। अमरीका का कहना है कि ये संगठन वीगर, कजाख और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के दमन और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में शामिल रहे हैं। अब बिना मंजूरी चीन के ये संगठन अमेरिका से कोई उत्पाद नहीं खरीद सकते। नाइजीरिया के लागोस यूनिवर्सिटी ने कहा है कि छात्राओं के यौन शोषण के मामले में बीबीसी की जांच के बाद उसने अपने एक प्राध्यापक को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। कार्यक्रम में सबसे पहले बात सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाकों को लेकर तुर्की और अमेरिका के बीच पैदा हुए तनाव की। अमेरिका ने उत्तरी सीरिया में तुर्की के साथ लगती सीमा से अपने सैनिकों को हटाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि अब ऐसा होते ही तुर्की कुर्द लड़ाकों को निशाना बना सकता है जिन्हें वो चरमपंथी मानता है, जबकि सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में यही कुर्द लड़ाके अमरीका के मददगार रहे हैं। एक और जहां तुर्की ने उत्तरी सीरिया में हमले की तैयारी कर दी है, वहीं ट्रंप ने बेहद सख्त लहजे में तुर्की को चेतावनी दी है। इसे लेकर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संदीप राय।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उत्तरी कोरिया से अमरीकी फौजों को हटाने के बाद अगर तुर्की अपनी हद पार करता है तो तुर्की की अर्थव्यवस्था को वो तहस नहस कर देंगे। ट्रंप ने इस बारे में कई ट्वीट किए हैं और अमरीकी सैनिकों को हटाने के अपने फैसले का बचाव किया है। ट्रंप ने कहा, हम सालों से सीरिया में हैं और माना जा रहा था कि हम जाएंगे और वापस आ जाएंगे। उस इलाके में हमारे केवल 50 सैनिक थे और मैं नहीं चाहता था कि ये 50 लोग घायल हों या मारे जाएं या ऐसा कुछ भी हो। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। माना जा रहा है कि इस फैसले से सीमा पर कुर्द लड़ाकों के खिलाफ हमला बोलने का तुर्की को मौका मिल जाएगा। इस फैसले की तीखी आलोचना ट्रंप के रिपब्लिकन सहयोगी भी कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक सदस्य नैन्सी पेलोसी और रिपब्लिकन मिच मैकोनल ने इसे खतरनाक और उतावला कदम बताया है। कुर्द लड़ाके सीरिया में इस्लामिक स्टेट को हराने में अमरीका के प्रमुख सहयोगी रहे हैं। सीरिया में अमरीका के 1,000 सैनिक तैनात हैं और सीमा से करीब 2 दर्जन सैनिकों को हटा लिया गया है। मुख्य कुर्द समूह ने सैनिकों को हटाने के फैसले को पीठ में छुरा भोंकना करार दिया है। कुर्दों का कहना है कि अमरीकियों ने उन्हें भरोसा दिया था कि वे इस इलाके में किसी भी तुर्की सैन्य अभियान को नहीं होने देंगे। सीरिया के कुर्द लड़ाकू संगठन YPG के राजनीतिक संगठन PYD के प्रवक्ता सालेह मुस्लिम ने कहा कि इस फैसले का उल्टा असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को इस बारे में कुछ करना चाहिए, खासकर तुर्की की ओर से हमले को देखते हुए इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में इसे शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए हम समझते हैं कि ये एक तरह से उन्हें फिर से संगठित होने का मौका देना है और ये बहुत खराब स्थिति है और हर किसी को इसके खिलाफ होना चाहिए। दाएश अभी खत्म नहीं हुआ। PYD के प्रवक्ता सालेह मुस्लिम के शब्द। सालेह का कहना है कि तुर्की के किसी भी हमले का कुर्द लड़ाके और उनके सहयोगी मुकाबला करेंगे। आलोचकों का कहना है कि इससे इस्लामिक स्टेट के फिर से उभार और कुर्द लड़ाकों पर तुर्की के हमले का खतरा हो सकता है। तुर्की कुर्द लड़ाकों को चरमपंथी मानता है, लेकिन ट्रंप ने तुर्की को इस फैसले का फायदा उठाने के प्रति चेतावनी दी है। हालांकि पेंटागन और विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सैनिक न हटाने की सलाह दी थी।
अमेरिका और तुर्की के बीच सीरियाई कुर्दों को लेकर पैदा हुए तनाव पर BBC संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुना रहे थे हमारे सहयोगी संदीप राय। अब बात भारत की। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। इस यात्रा की वजह है रफाल विमान, जो न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में चर्चित रहा है कुछ समय से, बल्कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी खासा सुर्खियों में रहा। कांग्रेस ने इसके सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। अब ये विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। क्या फिर से इन लड़ाकू विमानों को लेकर राजनीति गर्मा सकती है और इन लड़ाकू विमानों से भारत को क्या फायदा होगा? सुनिए इन्हीं सवालों की पड़ताल करती BBC संवाददाता कमलेश मठेनी की रिपोर्ट।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत के लिए पहला रफाल विमान लेने फ्रांस गए हैं। मंगलवार को रफाल में उड़ान भरने से पहले वे राजधानी पेरिस में शस्त्र पूजा करेंगे। कई विवादों और राजनीति का केंद्र रहने के बाद भी इस विमान की खरीद को लेकर सरकार उत्साहित रही है। वायुसेना इसे एक बेहतरीन लड़ाकू विमान बता चुकी है। ऐसे में यह सवाल सामने आता है, क्या रफाल के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी और युद्ध में ये कितना कारगर साबित होगा? इस संबंध में रक्षा विशेषज्ञ मारूफ रजा कहते हैं कि रफाल को बहुत सोच समझकर चुना गया है।
रफाल के मुकाबले का तो कोई हवाई जहाज अभी हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर है ही नहीं। उसका फ्लाइंग रेंज आम हथियार और हवाई जहाजों से बहुत ज्यादा है। जो मिसाइल्स लॉन्च किए हैं वो आपको टारगेट के नजदीक जाके नहीं फायर करना है, करीब 300 किलोमीटर से दूरी से आप फायर कर सकते हैं। 65-70% तक हवाई जहाज फुल्ली ऑपरेशनल रहेंगे। जो सुखोई हमारे साथ है वो 50% के तहत उसकी ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी है, यानी कि आधे हवाई जहाज किसी भी टाइम शायद खराब हो सकते हैं, मेंटेनेंस में हो सकते हैं। और चौथा इसका सबसे बड़ा खासियत है, पहाड़ी इलाकों के अंदर छोटे रनवे पे उतर सकता है, ये चलती हुई एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर समुद्र को उतर सकता है।
भारतीय वायुसेना के पास रूस से खरीदा गया सुखोई और फ्रांस से ही खरीदा गया मिराज भी मौजूद है। भारत सरकार का दावा था कि बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान मिराज का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में रफाल इन विमानों से क्या अलग खासियत रखता है, इस बारे में मारूफ रजा ने बताया।
इंडियन एयरफोर्स को चाहिए था मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। सुखोई जो है मीडियम में नहीं आता है, वो बहुत बड़े साइज का है, तो साइज के तहत सुखोई इससे बड़ा है। लेकिन ये थोड़ा छोटे होने के बावजूद इसके अंदर इस किस्म के वेपन्स प्लेटफॉर्म डाले गए हैं जो सुखोई में भी नहीं पाए जाते हैं। मिराज भी फ्रेंच एयरक्राफ्ट है, जहां मिराज थर्ड या फोर्थ जनरेशन, 3-3.5 जनरेशन का माना जाता है, रफाल 4.5-5 जनरेशन का है, तो एक जनरेशन आगे है उससे काफियत में मिराज से।
रफाल विमान की खरीद में भ्रष्टाचार और विमान की कीमत जैसे कई पक्षों को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गईं, विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए चौकीदार चोर है जैसा नारा दिया और सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए संसद में जवाब दिया। लेकिन चुनाव खत्म होते ही रफाल गायब हो गया। अब जब ये विमान फिर से चर्चा में है और भारत आ रहा है तो इसका क्या सियासी महत्व है, इस बारे में बताया राजनीतिक विश्लेषक राधिका रामाशेषन ने।
चुनाव के समय तो कांग्रेस ने इसको बड़ा सा मुद्दा बनाने की बहुत प्रयास की, लेकिन हमने देखा कि चुनाव में उसका कोई खास असर नहीं हुआ, बिल्कुल असर नहीं हुआ। तो जबकि बीजेपी चुनाव जीत गई, सरकार में बैठी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसे राजनीतिक दल जो है इसे फिर इस मुद्दा जैसे भून पाएंगे। जितना होना था वो हो गया। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई सियासी फायदा मिलने वाला है आने वाले महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में। लेकिन हाँ, बीजेपी कहेगी भी अपने भाषणों में कि कांग्रेस ने हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की बहुत प्रयास की, लेकिन कमल तो कीचड़ में ही फूलता है, पलता है, जो भी है, और जो हम हैं हम उससे सफलता से निकल चुके हैं।
हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव सामने हैं और देखना ये है कि रफाल क्या फिर से नेताओं के बयानों और भाषणों में सुनाई देगा या वायुसेना के बेड़े में चुपचाप अपनी जगह बना लेगा। कमलेश मठेनी, BBC, दिल्ली।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सख्त रुख अपनाते हुए हड़ताल कर रहे राज्य सड़क परिवहन निगम के 48,000 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव जारी है और मजदूर संघ भी इसमें शामिल हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और लोगों को यातायात में परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। BBC संवाददाता कमलेश मठेनी ने बात की हैदराबाद में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक से और पूछा कि इन कर्मचारियों की मांग क्या है और सरकार का क्या कहना है।
इन मांगों के साथ इन कर्मचारियों ने हड़ताल की है। उनमें सबसे मुख्य मांग यही है कि कॉरपोरेशन जो अब तक सरकार से अलग है, सरकारी सेवा से अलग है, उसको तेलंगाना सरकार में उसका विलय किया जाए। मतलब ये कि कॉरपोरेशन के जो इम्प्लाई हैं, जो निगम के जो कर्मचारी हैं, उनका दर्जा वही होना चाहिए जो कि सरकार के कर्मचारियों का है, और राज्य सरकार उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इससे उस पर जो वित्तीय बोझ बढ़ेगा वो बहुत ज्यादा होगा। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव काफी इस लेके गुस्से में नजर आ रहे हैं क्योंकि वो सरकार उनसे कर्मचारियों से कह रही थी कि वो हड़ताल पे ना जाएं, बातचीत के जरिए कोई समस्या का समाधान निकलेगा, लेकिन बात मानी नहीं गई और गत 3 दिनों से ये लोग हड़ताल पे हैं। और सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने खुद ये घोषणा की है कि जिन कर्मचारियों ने दुस्साहस किया है शनिवार की शाम से काम पर वापस लौटने से इनकार करके, उनको सरकारी उनको निगम की नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है।
कब से मामला चल रहा है कि अब हड़ताल तक बात पहुंची है, कहां से ये मांग उठी है?
कर्मचारियों की जो यूनियन है और उनकी जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, उनका ये कहना है उनके नेताओं का, पांच साल छह साल पहले जो जब तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई तभी से कि जो रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन है उसका हम लोग सरकार में विलय करेंगे और कर्मचारियों को वही दर्जा मिलेगा जो सरकारी कर्मचारियों का है। अब उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें धोखा दिया, वो अपने वादे से मुकर गए हैं। असल में इसका एक और कारण ये भी है कि पड़ोसी जो राज्य आंध्र प्रदेश है, वहाँ की जगनमोहन रेड्डी सरकार ने हाल ही में ठीक ऐसा ही किया है। वहाँ की जो रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन है उसका विलय हुआ है सरकारी सेवाओं में, सरकार के अंदर। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि हर साल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और अब तक कुल मिला के जो घाटा जमा हुआ है वो 5000 करोड़ रुपए का है और इतना बड़ा बोझ सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। नुकसान होने की बात समझ में नहीं आती क्योंकि काफी अच्छी सेवाएं चलती हैं, हर बस भरी हुई है, यात्रियों की कमी नहीं है। इन सब बातों के बावजूद जो नुकसान हो रहा है, अपोजिशन का कहना है कांग्रेस पार्टी का कि जितना यहाँ के ईंधन पर डीजल पर जितना वैट तेलंगाना सरकार ने लगाया है उतना किसी और सरकार ने नहीं लगाया है और जब जब डीजल का प्राइस बढ़ा है तब तब किराए नहीं बढ़े हैं। तो ये दो कारण बताए जाते हैं जिनके कारण ये जो नुकसान है, वित्तीय घाटा है, वो बढ़ता जा रहा है।
परिवहन व्यवस्था वहाँ पे क्या हाल है कि ट्रांसपोर्ट का लोग कैसे आ जा रहे हैं?
बहुत बुरा हाल है और भी ऐसे समय जबकि यहाँ पे दशहरे की छुट्टियां हैं और दशहरे का जो और एक बतकम्मा जो फेस्टिवल होता है और एक त्यौहार यहाँ तेलंगाना में वो चल रहा है। तो और ये ऐसा है कि इस त्यौहार के मौके पे हैदराबाद से और तेलंगाना के अन्य इलाकों से लाखों की संख्या में लोग अपने गाँव को जाते हैं, अपने देहातों को जाते हैं, खासतौर से आंध्र प्रदेश को जाते हैं। तो बहुत कम बसें चल रही हैं, 1100 के करीब कुछ बसें चलाई जा रही हैं जो कि बहुत कम है। 4000 अनेक निजी बसों को लाया जा रहा है आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थानों से ताकि सेवाएं चलती रहें, लेकिन वो नाकाफी है।
वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक बता रहे थे कि किस तरह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जिन 48,000 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का फैसला किया है, कैसे गतिरोध बना हुआ है और लोगों को क्या परेशानियां हो रही हैं। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर सरकार ने एक ही जगह से गाय का दूध और कड़कनाथ नस्ल मुर्गे के चिकन को बेचने की योजना को बंद कर दिया है। इस योजना का विरोध विपक्षी भाजपा और जैन समाज कर रहे थे। वहीं सरकार का तर्क है कि दूध और चिकन को एक ही पार्लर से नहीं बेचा जा रहा था बल्कि इसमें एक पार्टीशन किया गया था। क्या है मामला, सुनिए भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
इस योजना के तहत गाय का दूध और कड़कनाथ के चिकन को एक ही पार्लर से बेचा जा रहा था, हालांकि इसमें एक पार्टीशन किया गया था, लेकिन पिछले महीने शुरू हुई इस योजना का विरोध विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और जैन समाज के लोग कर रहे हैं। भाजपा से जुड़े कई स्थानीय नेताओं का कहना है कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। भाजपा के नेताओं का कहना है कि सरकार को किसी भी विषय पर निर्णय लेने से पहले देखना चाहिए कि उनका कदम किसी धर्म के खिलाफ तो नहीं है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा,
सरकार मुर्गे के कड़कनाथ का व्यापार करना चाहती है, वह हर्ष करे, वो अलग दुकान खोले और गौ माता के दूध का अगर पार्लर बनाना चाहती है तो उसको अलग बनाए। हिंदू धर्म की पवित्रता जरूरी है क्योंकि गौ माता के दूध से भगवान का अभिषेक होता है, भगवान की पूजा होती है, अनेक धार्मिक उपासों में और व्रतों में लिया जाता है।
वहीं प्रदेश का जैन समाज भी इस निर्णय से आहत है। जैन समाज ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा था। मध्य प्रदेश दिगंबर जैन समाज के प्रवक्ता रविंद्र जैन ने कहा,
दरअसल ये बड़ी आश्चर्यजनक चीज है कि मध्य प्रदेश इसके पहले भी प्रयास हुआ था और फिर से पुनः प्रयास शुरू हुआ है कि जो दूध के मिल्क बार है, जो दूध के बूथ हैं, उन पर कड़कनाथ जो मुर्गा है उसकी चिकन बेचने का प्रयास किया। यहाँ मध्य प्रदेश में 60% लोग जो है ना शाकाहारी समाज के लोग हैं, किस तरह से वो अपना भोजन में इस तरह से स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए हमने इसका विरोध किया।
हालांकि विपक्ष की मुहिम को सत्ता पक्ष पूरी तरह से बेबुनियाद बता रहा है। प्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा, चिकन पार्लर और दूध पार्लर के बीच में पार्टीशन रखा गया है लेकिन विपक्ष बेवजह का मुद्दा बना रहा है।
दोनों का अलग अलग पार्लर, एक इसमें नहीं है, एक केबिन में नहीं है, अलग अलग दोनों के लिए रखा है। दूध का अलग पार्लर है बगल में, लेकिन दोनों के कैंपस अलग है। जो रखने का सिस्टम है उनका सामान, चाहे दूध हो चाहे मांस हो, दोनों का अलग है, दोनों की दीवार अलग है, निश्चित तौर पर, लेकिन बगल बगल में इसलिए कि हर व्यक्ति को हर जगह एक ही जगह वो सुविधा हो जाए।
लेकिन अब सरकार ने आदेश निकालकर अपने निर्णय को बदल दिया है। अब चिकन और दूध दोनों ही अलग पार्लर से बेचे जाएंगे और दोनों अलग अलग स्थान पर होंगे। भोपाल में शनिवार को आरएसएस से जुड़ी संस्था सहकार भारती ने भी इस पार्लर के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि इसे बंद किया जाए। शहर में पहला पार्लर पिछले महीने ही खुला था। अब सरकार चिकन पार्लर और दूध पार्लर को दूरी पर खोलेगी ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। इस योजना के तहत चिकन बेचने के पीछे सरकार की मंशा थी कि आदिवासियों को रोजगार मिले और उन्हें अपने उत्पाद का सही दाम मिले। इसमें प्रदेश के झाबुआ, धार और अलीराजपुर में मिलने वाले कड़कनाथ मुर्गे का चिकन और अंडे उपलब्ध कराए जा रहे थे। यह पार्लर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत खोले जा रहे हैं। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
और अब दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी संदीप राय।
जी आदर्श, दिल्ली से प्रकाशित होने वाले आज के लगभग सभी अखबारों ने मुंबई मेट्रो के शेड बनाने के लिए आरे के जंगल में काटे जा रहे पेड़ों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुर्खियां बनाई हैं।
जी,
द स्टेट्समैन की खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। हालांकि मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने शनिवार और रविवार को 98% पेड़ पहले से ही काट डाले थे।
जी,
दूसरी खबर जो आज के लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है वो है स्विस बैंक ने ब्लैक मनी से संबंधित सूचनाओं की पहली सूची भारत को सौंप दी है। इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है कि स्विस बैंक खातों की पहली सूची भारत को मिल गई है, लेकिन इन सूचनाओं को कड़े गोपनीय समझौतों के तहत साझा किया गया है। भारत उन 75 देशों में शामिल है जिनका स्विट्जरलैंड के टैक्स डिपार्टमेंट के साथ समझौता हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जिसके अनुसार तालिबान अपने 11 नेताओं के छोड़ने के बदले 3 भारतीय बंधकों को रिहा करने जा रहा है। तालिबान ने पिछले साल मई में 3 भारतीय इंजीनियरों का अफगानिस्तान में अपहरण कर लिया था। इस्लामाबाद में अमरीकी प्रतिनिधियों और तालिबान के बीच हुए एक समझौते के बाद उन्हें रिहा किया जा रहा है। तालिबान के शीर्ष 11 नेता अफगानिस्तान के अलग अलग जेलों में बंद हैं।
जी,
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है जिसके अनुसार दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए 15 अक्टूबर से डीजल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है।
जी,
इस दौरान हाउसिंग सोसाइटी में लिफ्ट के संचालन के लिए इसमें छूट दी गई है।
एक इस दिल्ली एनसीआर से ही जुड़ी खबर है, नवभारत टाइम्स पे देख पा रहा हूँ कि ये जो ऑड इवन जो योजना है प्रदूषण कम करने की, तो उसमें ये होता था कि जो सीएनजी वाली गाड़ियाँ उनको राहत दी जाती थी, लेकिन इस बार शायद रेड सिग्नल मिलने वाला है उनको। ये कहा जा रहा है कि शायद उनको छूट ना मिले, यानी उनको भी ऑड इवन के हिसाब से चलना पड़ेगा।
जी, हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है जिसमें जम्मू कश्मीर में 2 महीने के अंदर के बाद जो पर्यटकों पर लगी जो पाबंदी थी उसको हटाया जाएगा, इसकी ऐसी खबर है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। रुख करते हैं बिहार का। भारी बारिश के बाद जल जमाव की भीषण समस्या से जूझ रहे पटना के कई इलाकों से अब तक पानी नहीं निकाला जा सका है। ये पानी अब काले रंग का हो चुका है, सड़ चुका है, इससे दुर्गंध आ रही है और बीमारियां फैलने का खतरा भी पैदा हो गया है। इन हालात में लोग कैसे रह रहे हैं, इसी पर सुनिए हमारे सहयोगी नीरज सहाय की रिपोर्ट।
सितंबर माह के अंतिम में 3 दिनों तक इतनी बारिश हुई कि बिहार की राजधानी पटना की दर्जनों नई पुरानी कॉलोनियों में 5-6 फुट तक पानी भर गया। यहां जनजीवन आज तक अस्त व्यस्त बना हुआ है। बारिश रुकने और सप्ताह भर की तेज धूप के बावजूद राजेंद्र नगर, कदम कुआ, पाटलिपुत्रा कॉलोनी सहित अनेक इलाकों से अब तक पानी नहीं निकला है। यहाँ आज भी घुटने भर पानी में जिंदगी डूब रही है। बीमारों, बुजुर्गों की दशा दयनीय है। राजेंद्र नगर के चार मीनार अपार्टमेंट के 3rd तल्ले पर रहने वाली प्रोफेसर प्रतिमा शरण उनमें से एक हैं। लगभग 65 साल की प्रोफेसर शरण के लिए बाहर की दुनिया को देखने समझने के लिए उनका एकमात्र सहारा उनकी घर की खिड़की थी, लेकिन अपार्टमेंट के कैंपस में मरे जानवरों के तैरते लाश लगातार दिखने पर उन्होंने उस खिड़की को बंद कर दिया है।
यूटीआई इन्फेक्शन के वजह से हम किसी भी गंदे पानी से नहा नहीं सकते हैं, न मेरा कपड़ा धुल सकता है। डिटॉल के पानी से धो करके हम लोग काम चलाते हैं। पीने का पानी खत्म हो गया तो बिस्लेरी के पानी से हम लोग पीना शुरू किया, तो 2 बोतल 3 बोतल मिलता था, तो वाटर इनटेक मेरा कम हो गया, जिसके वजह से और हमारा एग्रीवेट कर गया और खाने पीने में भी दिक्कत हो गई। हम डायबिटिक भी हैं, कहीं आ नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं।
भीषण जल जमाव से प्रभावित राजेंद्र नगर के कई सड़कों पर आज भी 3 से 5 फीट तक पानी जमा है। 8 दिनों से जल जमाव की वजह से पानी का रंग मटमैले से काला हो गया है। घुटने भर से ऊपर तक जमा पानी के बीच रोड नंबर 12 पर चलने के दौरान कई बार पैर डगमगाते हैं। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े आलीशान मकान हैं, लेकिन ज्यादातर खाली हैं। अब यहाँ रात में चौकस रहने वाले कुत्ते भौंकते नहीं, रोते हैं। इन भीषण परिस्थितियों के बीच अपार्टमेंट में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ तिवारी का कहना है,
देखिए ऐसी जिंदगी पहले कभी नहीं थी और ऐसी स्थिति का सामना कभी करना नहीं पड़ा था। राजेंद्र नगर में अपार्टमेंट के फोर्थ फ्लोर पर हैं और फोर्थ फ्लोर से नीचे हम 8 दिन से नहीं गए हैं और बिना पानी, बिना बिजली, बिना इंटरनेट, बिना फोन कनेक्शन के हम लोग लाइफ स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पूरे परिवार के साथ।
लगभग 10 दिनों से ठहरा पानी पिछले कुछ दिनों से सड़ने लगा है। इलाके के कई लोग घर छोड़कर चले गए हैं और पटना के होटल पहली बार स्थानीय लोगों से भर गए हैं। अपार्टमेंट के बाहर रिक्शे पर मिले शिव कुमार राम सपरिवार पिछले सोमवार 30 सितंबर को फ्लैट खाली कर चुके हैं।
अभी एक्शन रोड शिफ्ट किए हुए हैं, आते जाते रहते हैं, क्या घर द्वार तो ऐसे अकेले छोड़ नहीं सकते हैं, चोरी उरी के बहुत हल्ला हो रखा है, ताला बंद है और लोग को हम होटल में शिफ्ट किए हुए हैं।
भीषण जल जमाव के बीच जो लोग यहां से निकल चुके हैं उन्हें चोरी का भय सता रहा है और जो यहां हैं उनके जीवन का संघर्ष जारी है। नीरज सहाय, BBC, पटना।
आज दशहरा है। आज से एक साल पहले पिछले दशहरे को अमृतसर में जोड़ा फाटक पर दशहरा देखने वालों की भीड़ लगी थी, तभी पटाखों की तेज आवाज के बीच अचानक ट्रेन आई और कई जिंदगियां छीन ले गई। इसी हादसे में कई परिवारों ने अपनों को खोया, जिनमें ऐसे भी परिवार थे जिनके घर में अब कोई कमाने वाला नहीं रहा। ऐसे ही एक परिवार का हाल बयां करती हमारे सहयोगी रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट सुनिए कमलेश मठेनी से।
ये पटाखों और रेल के आने की आवाज है 19 अक्टूबर 2018 की, जब अमृतसर में दशहरे के दिन हुए एक रेल हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी। वो दिन कई परिवारों की जिंदगी में अंधेरा कर गया। अमृतसर का एक ऐसा ही परिवार है जिसमें दो भाइयों वीरेंद्र कुमार और पवन कुमार की उस हादसे में जान चली गई। परिवार में कमाने वाला कोई नहीं रहा और घर और बच्चों की जिम्मेदारी का सारा बोझ दोनों भाइयों की पत्नियों अरुणा और सीता पर आ गया। अब दोनों सिलाई करके किसी तरह घर चलाती हैं। उन्हें मुआवजा तो मिल गया है, लेकिन उनकी शिकायत है कि पंजाब सरकार ने उनके बेटे को नौकरी नहीं दी। अरुणा कहती है कि उन्हें ना मदद मिली है और ना इंसाफ।
साल हो गया मेरे बेटे को चक्कर लगा लगा के इन लोगों के पास, इन्होंने कुछ भी नहीं कराया, एक सिर्फ झूठा लारा दिया है कि आप इस दिन आइए, आप इतने दिनों के बाद आइए, आप बस यही झूठा लारा दिया है, बाकी कोई उम्मीद इन लोगों से कुछ नहीं मिली है। और इस टाइम हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हमारे घर में 8 लोग आएंगे, 2 फैमिली आएंगे, दोनों फैमिलियों में इतनी ज्यादा दिक्कत है कि किस तरह हम लोग खा रहे हैं, किस तरह क्या कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है।
वहीं सीता अपनी नाराजगी जताते हुए कहती हैं कि अगर आज सरकार हमारे लिए खड़ी नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी।
सरकार जीत गई है, भगवान जीत गया है, बाकी हम सब हार। सरकार गरीबों के लिए कभी नहीं खड़ी हुई, अगर आज नहीं खड़ी हुई ना तो सरकार कभी नहीं खड़ी होगी हमारे लोगों के लिए। इससे बड़ा दुख अब हम लोगों के लिए कुछ नहीं है।
हादसे के बाद पंजाब सरकार ने पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक सदस्य को नौकरी देने या शिक्षा की व्यवस्था करने का वादा किया था। परिवार के सबसे बड़े बेटे दीपक, जो ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं, उनकी शिकायत है कि नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए लेकिन अब कोई सामने नहीं आता।
देखो उन्होंने प्रॉमिस किए ने,
उन्होंने जो वादे किए वो सबको पता ही है। मुख्यमंत्री ने भी नौकरियां देने की बात कही थी, उस समय माहौल गर्म था तो सिद्धू और दूसरों ने हमें शांत करने के लिए बहुत से वादे कर दिए, लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। हमें इंसाफ चाहिए, हादसे के प्रमुख दोषियों को सजा मिले। रेलवे ने तो पल्ला झाड़ लिया, लोगों पर ही सीधे आरोप लगा दिया, लेकिन पंजाब सरकार की जो रिपोर्ट आई है उसमें दशहरा कमेटी के आयोजक, फाटक के गेटमैन और जिस कारपोरेशन ने परमिशन दी थी या परमिशन नहीं दी, रिपोर्ट में इन सब के बारे में बताया गया है, लेकिन ये रिपोर्ट सामने नहीं आई।
आज दशहरा है और हादसे को 1 साल पूरा हो चुका है। जहां देश में खुशी का माहौल है, वहीं हादसे के पीड़ित परिवारों के लिए ये त्यौहार उस दर्दनाक पल की याद भी लेकर आया है।
रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट सुना रही थी कमलेश मठेनी। और अब विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर संदीप राय से।
BBC समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि सीरिया के मामले में अगर तुर्की अपनी हदें पार करता है तो उसकी अर्थव्यवस्था को वो तबाह कर देंगे। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उत्तरी सीरिया में संभावित सैन्य अभियान की उसने पूरी तैयारी कर ली है। मेडिसिन में इस साल का नोबेल पुरस्कार एक ब्रितानी डॉक्टर और 2 अमरीकी वैज्ञानिकों को मिला है। इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह ने देश में जारी हिंसा की निंदा की है और दोषियों को जनता का दुश्मन बताया है। अमरीकी शोधकर्ताओं ने कहा है कि उन्होंने ग्रह शनि की कक्षा में चक्कर लगाने वाले 20 चंद्रमाओं की खोज की है। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ चल रही महाभियोग की कार्रवाई के तहत अब व्हाइट हाउस और पेंटागन को कानूनी नोटिस जारी किया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के संक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। शाम 7:30 बजे दिन भर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक bbchindi.com के साथ जुड़े रहिए। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।